ओम शांति। परमपिता परमात्मा एक अद्भुत शिल्पी है जो आने वाली नई दुनिया सतयुग की स्थापना हेतु चैतन्य मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। मूर्ति बनाने में जहां शिल्पकार की अथक मेहनत होती है, वही मूर्ति बनने जा रहे प्रस्तर खंड का भी उस योग्य होना जरूरी है, तभी मूर्ति यथा स्वरूप लेती है और बनती है चैतन्य मूर्ति। एक ऐसी ही चैतन्य मूर्ति बाबा ने तैयार की जो कि कुशाग्र एवं तार्किक बुद्धि की धनी है, वाणी में जिनके सरस्वती का वास है, वाणी से सरस सलिल बरसाने वाली आदरणीय शीलू दीदी जी जो आज हमारे बीच हैं, हम सभी आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। सन 1948 में लौकिक जीवन की शुरुआत के बाद 1960 में आप बाबा का परिचय प्राप्त कर ईश्वरीय पालना ली। 1969 में 21 वर्ष की आयु में ही लौकिक पढ़ाई पूरी करके अलौकिक सेवाओं हेतु यज्ञ में समर्पित हो गए। ब्रह्मा बाबा से पालना लेकर बाप के कदम पर कदम रख कर अनवरत सेवा में तल्लीन हैं। विदेशों में आपकी सेवाएं विशेष सराहनीय हैं। कई विशेषताओं से भरपूर दीदी जी की एक विशेषता यह है कि आप कई भाषाओं में धारा प्रवाह अपने वक्तव्य रख सकती हैं। वर्तमान में एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आज आपकी अनमोल वाणी की झंकार से लाभान्वित होंगे हम सभी। दुआएं लेंगे क्योंकि आज विषय है दुआएं दो दुआएं लो। आदरणीय शीलू दीदी जी,
अभी हम सब ने बड़ा मधुर गीत सुना। दिल से देते जाओ दुआएं, सब सुख पाए, सबको सुख मिले, सब सुखी हो जाएं, इसलिए दिल से दुआएं देते जाओ। तो यही विषय है हमारा, दुआ दो दुआ लो, क्योंकि ये भी कर्म की गति है कि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। आप अगर दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेगी, आप बद्दुआएं देंगे तो बद्दुआएं मिलेगी। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, ये कर्म की गति है। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है, आप अपने प्रति जो कुछ भी चाहते हो वो आप दूसरों को पहले दो। आप अपने प्रति क्या चाहते हो? दुख नहीं चाहते हो, बद्दुआ नहीं चाहते हो, लेकिन सुख चाहते हो और दुआएं चाहते हो, तो ये आपको पहले देना होगा, फिर आपको मिलेगा। अगर मनुष्य बीज में कांटे बोए और अपेक्षा रखे कि उसे फूल मिले तो कैसे मिलेंगे? फूल चाहिए तो फूल का बीज बोना पड़ेगा, कांटे का नहीं। ये कर्म गति अति सत्य है, शाश्वत है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन कई बार हम दुनिया में जब नजर घुमाते हैं तो कुछ अलग सी बातें दिखाई देती है। इसीलिए लोगों के मन में इस कहावत पर या इस सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। कई कहते हैं हम देते तो औरों को सुख है, लेकिन लोग हमें दुख क्यों देते हैं? हम तो सबके लिए दुआएं ही करते हैं, लेकिन लोग हमको बददुआएं क्यों देते हैं? अवश्य ये प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि हम जो देते हैं यही अपेक्षा करेंगे कि औरों से भी हमें वही मिले। लेकिन कई बार कुछ अलग सी परिस्थिति जब नजर आती है तो फिर हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। दूसरों तरफ हम अंगुली उठा लेते हैं। लेकिन जैसे कहा गया है ना कि जब किसी पर दोष धरते हैं तुम ऐसे हो, तो तीन अंगुली किसके तरफ है? अपनी तरफ है। तो हो सकता है वो व्यक्ति एक गुना दोषी हो, लेकिन उस एक की भेंट में तीन गुना दोषी तो मैं हूं। पर हम अपनी कमियों को, कमजोरियों को कम देखते हैं और दूसरों की कमी कमजोरियों पर बहुत जल्दी नजर जाती है। कई कहते हैं कि हम तो दूसरों को सुख देते हैं, लेकिन हमें क्यों दुख मिलता है? कर्म की गति तो यही है, अगर सुख दोगे तो सुख ही मिलेगा। लेकिन अगर दुख मिलता है तो ये नहीं है कि उसने दिया और आपने लिया। अभी आपके ऊपर है कि आप न लो। कोई जबरदस्ती तो किसी को कुछ दे नहीं सकता है, जबरदस्ती तो किसी से कुछ कोई करा नहीं सकता है। आप न लो, चाहे उसने दो गाली दी, चार अपशब्द कहे, कुछ भी धोखा दिया, कुछ भी किया, आप उसका दुख न लो। कोई जबरदस्ती तो उसने आपको दुख नहीं दिया, आप अपनी सोच को बदल दो। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि हम चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति हो, आज का वरदान था, परंतु अगर हम उसमें कल्याण की भावना सोचें तो हमें वो परिस्थिति नहीं नजर आएगी, वो हमारी स्वस्थिति के कारण वो परिस्थिति कोई दुख नहीं देगी, क्योंकि हमारी स्वस्थिति ऊंची है। तो परिस्थिति हमारे आगे विघ्न रूप नहीं बनेगी। हम उसको एक कल्याण की भावना से देखते हैं कि इसमें भी कोई कल्याण था, इसमें भी कोई अच्छाई थी, इससे भी चलो ये लाभ मिलेगा। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक पहलू, एक सकारात्मक पहलू। तो अगर उसमें से एक सकारात्मक पहलू ले लेते हैं तो हमें वो कल्याण ही दिखेगा, अकल्याण नहीं दिखेगा। कोई मुझे गाली दे, मेरी इज्जत भी ले ले, यानी कुछ बुरा भला कहे, अब ये उसका नजरिया है, पर मैं अपने स्वमान में और भी ज्यादा रहूं तो मुझे उसका दोष नहीं लगेगा। लोग भी तो समझेंगे ना कि इसका दोष तो है नहीं, ये क्यों ऐसे कह रहा है। तो हम न ले, ये हमारे हाथ में है। पर मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम उसमें भी सकारात्मक सोच सकते हैं कि चलो कोई पुराना हिसाब किताब था, चुप तो हो गया, पता नहीं किस जन्म का होगा, इस जन्म में तो मैंने इसे कोई दुख नहीं दिया, किसी पुराने जन्म का खाता बचा हुआ था, वो चुप तो हो गया, ये कर्जदार के रूप में मेरे सामने आया और कर्जा लेकर चला गया, मेरा हिसाब किताब चुक तो हुआ, मैं बोझ मुक्त हो गया। तो ये भी एक सकारात्मक पहलू है, उसमें हम दुखी थोड़ी होंगे। चाहे वो कितना भी हमें दुख देने की कोशिश करे, लेकिन ये मनुष्य का अपना अभिमान है जो अपमान की महसूसता कराता है। तो हम अपना अभिमान अगर तज दे तो अपमान लगेगा ही नहीं, और अभिमान तज गया तो हम अवश्य दूसरे को दुआ ही देंगे। लेकिन हम दुआ नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी तक अभिमान खत्म नहीं हुआ है। तो दुआ दो, दुआ लो, अगर ये जीवन का लक्ष्य बन जाए तो ये जीवन कितना महान हो जाए। लेकिन दुआएं, कई लोग दुआएं मांगते हैं, किसके पास भी जाएंगे कहेंगे आप जरा मुझे, मुझ पर दुआ करो। बड़ों के सामने जाएंगे तो कहेंगे मुझे आशीर्वाद दो। भक्ति मार्ग में देवी के आगे जाते थे, कोई भी देवता के आगे जाते थे तो उनसे वरदान मांगते थे। तो जो हम शरीक हैं, हमारे से छोटे हैं, उनसे भी हम दुआएं मांगते हैं, बड़ों से भी दुआएं मांगते हैं, पर आशीर्वाद, दुआ और वरदान, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। दुआएं तो हम किसी से भी मांगते हैं। एक गीत भी है बड़ा सुंदर, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो माँ बाप की सेवा करते हैं, अवश्य माँ बाप से दुआएं मिलती है। कोई गरीब की सेवा करते हैं तो उससे दुआ मिलती है। किसी असहाय को मदद करते हैं, अवश्य उनके दिल से दुआ निकलती है। परंतु अगर हमने मदद करने की बजाय कुछ गलत ऐसा कर लिया तो बददुआ भी निकल सकती है, पर अगर हमने अच्छा किया तो भी बददुआ अगर निकली तो ये हम अपने को ही कहें कि जरूर इसमें मेरी कोई कमी होगी। नहीं तो अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो बददुआ क्यों कोई देगा। एक छोटा सा किस्सा सुनाओ, मैं बहुत छोटी थी, अपने घर में रहती थी, तो मेरे पड़ोसिन जो थी वो रोज एक भिखारी को भोजन देती थी, रोज बिना नागा हर एक दिन भोजन उनको खिलाती थी, और वो रोज पहुंच जाता था उनके पास भोजन खाने के लिए। अब तो रोज वो उसे दुआएं देके जाता था, माता जी आज जीते रहो, तुम्हारे बच्चे जीते रहे, तुम्हारी आयु बड़ी हो, दुआएं देते ना ऐसे, आप बहुत सुखी रहो, बहुत खाकर जाए पेट भर के और उसको दुआ देके जाए। अब एक दिन क्या हुआ कि उसको अचानक कहीं काम पड़ गया, बहुत जरूरी जाना था, तो उसने खाना ही नहीं बनाया था और वो निकल रही थी, उसी समय पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा भोजन मांगने लगा। रोज देती थी, एक महीने से लगातार उसको दे रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी कि मुझे दुआएं मिल रही है, किसको भोजन खिला रही हूँ। अब जैसे ही वो पहुंच गया तो इसने कहा माफ करना, आज तो मेरे पास भोजन नहीं है, आज पकाया ही नहीं है, अगर ऐसी बात है आप अनाज ले जाइए, चावल ले जाइए, आटा ले जाइए, सब्जी ले जाइए, पर आज हमने कुछ पकाया नहीं है। तो बस इतना आग बबूला हो गया, मैं तो देखती रह गई, रोज तो उसे दुआएं देता था और आज वो इतना आग बबूला हो गया, इतना गुस्सा किया जो सारे एक महीने की जो दुआएं थी ना, अब सोचो क्या हुआ होगा। वो पल भर में बददुआओं के रूप में सब बदल गई और उसको गालियां तक देने लगा। अब वो बिचारी घबराई, डरी, तो मैंने उस माता को, मैं तो वही खड़ी सब तमाशा देख रही थी, तो मैंने उस माता को सांत्वना दी, मैंने कहा घबराओ मत, आप कुछ मत कुछ कहो, शांत रहो, क्योंकि वो भी गुस्से में आ गई, वो भी गुस्से में आ गया, वो भी गुस्से में आ गया, आ गई, दोनों एक दो पर गुस्सा ही कर रहे हैं। मैंने कोई ठेका उठाया है क्या? तो मेरे क्या लगते हो, आधी आधी नहीं, जैसे एक दो के साथ वो ये तू तू मैं हो जाता है, तो दोनों ही एक दो पर बरस पड़े। अब वास्तव में ये तो आप कहेंगे किसकी कमी थी, किसकी कमजोरी थी, किसकी भूल थी? वास्तव में तो दोनों की भूल थी, उसने उसको आदत डाल दी, ऐसी आदत डाल दी दो जो उसने समझ लिया कि बस मुझे तो रोज यहीं से ही खाना मिलेगा, और इतना उसमें वो आदि हो गया जो और कोई स्थान में जाना है यही भूल गया। भले गरीब था, भले बहुत ही असहाय था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी इतना ही था, वो माता ने उसी समय देख लिया, समझ लिया। पर उसने भी तो उतना ही पाप किया जो उसको बुला बुरा भला कहती रही। तो एक महीना जो उसने थोड़ा बहुत पुण्य कमाया ना उसकी दुआएं पाकर, अब बताओ वो 10-15 मिनट में सब पुण्य खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं कि देखो भक्ति मार्ग में क्या मनुष्य करते हैं समझ तो है नहीं, क्योंकि विकारों से तो भरपूर है ही है। कई लोग हम लोगों को कहते ना, आप लोग गरीबों का लंगर लगा दो या भिखारियों को सारा दिन खिलाते रहो। कई जगह होता है मंदिरों में गुरुद्वारों में खाके जाते हैं, हजारों आते हैं, और यहाँ पर ये ऐसे ही लगा रहे। हम कहते नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक संस्था है, ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, चरित्र निर्माण की बात कही जाती है, जीवन बनाने की बात कही जाती है, केवल पेट भरने की बात नहीं है। जो यहाँ आते हैं अवश्य भोजन करते हैं, आप भी आए हो, आप भी कर रहे हो, इसलिए जो यहाँ आते हैं पहले यहाँ की जो आध्यात्मिक सेवाएं हैं वो लेते हैं, फिर अवश्य भोजन भी करते हैं, सबके लिए भोजन बनता है। पर हम यहाँ लंगर नहीं लगाएंगे जैसे कई स्थानों पर होता है, यहाँ भिखारी आके सारा दिन खाते रहे, उस रूप से तो नहीं है, यहाँ तो हजारों है। आजकल तो भिखारियों की बिजनेस हो गई है, ये भिखारी बनना ये भी एक बिजनेस हो गया है। एक जोक सुनाते हैं ना कि एक व्यक्ति भिखारी था, उसने 1 रुपए की लॉटरी ले ली, तो किसी ने पूछा एक तुमने लॉटरी ली 1 रुपए की आती थी तब, तो किसने कहा अगर आपको मोटर गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, इसकी फर्स्ट प्राइज कार थी, तो अगर फर्स्ट प्राइज कार मिल जाए इस लॉटरी टिकट की तो आप क्या करोगे? तो क्या जवाब दिया उसने, गाड़ी में आऊंगा भीख मांगने के लिए। गाड़ी मिल गई तो अच्छी बात है, गाड़ी में आऊंगा भीख मांगने के लिए, क्योंकि तो धंधा है ना मेरा, ये हो गया है। तो किस रूप से दुआएं दो और दुआएं लो, ये हमें समझना होगा। अवश्य पुण्य कर्म तब बनेगा जब दान करते हैं, तो दान का पुण्य बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आवश्यकता अनुसार भले दो, हर्जा नहीं, लेकिन जो आज मनुष्य का चरित्र इतना बिगड़ गया है, इतना वो चरित्र की नींव हिल गई है, इतना देह अभिमान में है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ये कितना बड़ा दान है। जो चाहे आप मनसा से दो, चाहे वाचा से दो, चाहे कर्मणा से दो, ये आपका बहुत बड़ा पुण्य बनेगा, उसका जीवन बदलना है। केवल दो रोटी देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई कहते हैं ना कि अगर किसी को कोई भूखा है तो उसको 2 रोटी देंगे तो दुआएं मिलेगी, भूखा है आपका ज्ञान कैसे सुनेगा, उसको तो पहले भोजन चाहिए। हम कहते हैं भले 2 भोजन, मना थोड़ी है, परंतु केवल भोजन देकर ही पूरा नहीं करो अपना कर्तव्य, पर उसको साथ साथ वो आध्यात्मिक बातें भी सुनाओ, ताकि उसकी आत्मा की ज्योति जगे, उसको रियलाइज हो कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, मेरा जीवन कैसे सुधरे, मेरा जीवन कैसे सफल हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये सेवा करो, जिससे आपको दुआएं मिलेगी, ये ज्ञान का बीज हर एक में डालो, फाउंडेशन है ये। कई कहते हैं हम ज्ञान तो दूसरों को सुनाते लेकिन कोई समझते नहीं, कोई सुनते नहीं है। हम कहते हैं बाबा कहते हैं कि आप बीज तो डालो ना, एक दिन जरूर इसका फल निकलेगा। कई ऐसे अपना अनुभव सुनाते, आपने मुझे 20 साल पहले ये कहा था लेकिन उस समय मेरी आंख नहीं खुली, अब मुझे वो महसूस हो रहा है कि आपने जो कहा था ना वो सही कहा था। चलो 20 साल के बाद ही चलो अंकुर निकला, उस समय ना निकला पर निकला तो सही। तो दुआएं, दो दुआएं लो, पर कई समझते पहले हम दुआएं अपने लिए भी तो लेवे ना, हमारे पास ही शक्ति नहीं है तो हम दूसरों को दुआएं कैसे दे सकते हैं। तो कोई शक्तिशाली हो वही दुआ दे सकता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा तो है ही अपने असली स्वरूप में श्रेष्ठ ना। तो इसीलिए चाहे कोई नहीं समझ रहा है, वो भले अगर बद्दुआ देता भी है लेकिन मुझे दुआ देनी है, माना मुझे कोई ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो मेरा पाप का खाता जमाओ, पहले ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। किसने मुझ पर क्रोध किया और मैंने रिटर्न में क्रोध किया, क्योंकि उसने किया तो इसलिए किया, और उसने किया तो अपना पाप कर्म बनाया, मैं करूंगी तो मेरा बनेगा, उसने बद्दुआ दी तो उसका पाप कर्म बना, पर मैं बद्दुआ फिर क्यों साथ में दूं, मेरा भी तो बन जाएगा। इसलिए दुआ लेना और दुआ देना इसकी एक बहुत सुंदर विधि है। कैसे देंगे दुआ? पहले तो हर एक आत्मा के प्रति हमारी भावना शुद्ध हो, बस ये बहुत जरूरी है। चाहे उसकी कितनी भी अशुद्ध भावना मेरे प्रति हो, चाहे मेरे बारे में वो कितना भी बुरा सोचता हो, अब उसके मन को तो हम रोक नहीं सकते, किसी को भी हम रोक नहीं सकते। आज मेरे लिए कोई अगर बुरा कहता है तो मैं जाकर के उनसे लड़ तो नहीं सकती हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसे बुरा क्यों कहते हो, वो कहेगा कहूंगा आप कौन होती हो बोलने वाली, आप हो ऐसे, आप हो तभी तो कहता हूँ, ऐसे ही हो सकता है ये कह दे मेरे लिए। तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि आप मेरे लिए ऐसे क्यों कहते हो, क्योंकि भारत देश फ्रीडम ऑफ स्पीच आज प्रधानमंत्री के लिए भी कितना कहते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी कह देंगे, किसका मुख आप बंद करोगे। तो इसलिए मुख बंद करने की बात नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा व्यवहार हो जो किसके अंदर में मेरे प्रति कोई बुरा विचार आए ही नहीं। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर उसकी विधि बताई है। बाबा कहते हर कर्म श्रीमत के अनुसार करो। अमृत वेले से रात्रि तक बाबा ने हमको हर एक बात की श्रीमत दी हुई है। अब हो सकता है जो श्रीमत हमें बाबा से मिली है वो हमारे कल्याण के लिए मिली है, परंतु क्योंकि कलयुगी दुनिया में जो देह अभिमानी मनुष्य है वो इसको कल्याण नहीं समझते हैं। अभी हम शुद्ध अन्न खाते हैं, बाबा की याद में पकाते हैं, बाबा की याद में भोजन करते हैं। अब कई कहेंगे हम क्या छूत है, आप हमारे हाथ का नहीं खाते हो, हमारे हाथ का क्यों नहीं खाते हो, आदि आदि कई कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको श्रीमत को महत्व देना है, वो कुछ भी कहे भले कहे, हमने तो नहीं कहा कि आप अछूत हो, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारा ये असूल है तो प्यार से भी कोई बात कह सकते हो, कोई कितना भी अपशब्द कहे, कोई कितना भी कुछ कहे। इसको बाबा कहते हैं दुआएं देते जाओ, भगवान आपका भला करे, आपको सुमति देवे, आपको अच्छी मत मिले, हम तो आपको दे रहे हैं, आप उस अच्छी मत को मानो या न मानो। कई ऐसे भी आज की दुनिया में ये मानने लगे कि यहाँ वहाँ का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कितना उसमें क्या एडल्ट्रेशन है, उसमें मिलावट है, पता नहीं क्या क्या टेलीविजन में दिखाते हैं, कैसे सब नकली माल है, क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, लोग उसको खाते हैं तो अपना ही स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। तो बाबा ने तो देखो हमको पहले से ही इनसे सावधान कर दिया है, ताकि बच्चे और यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं खाना है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या जादू टोना भी करते हैं, कुछ खिला करके कुछ जादू भी कर लेते हैं, क्या नहीं आज गलत कर्म संसार में हो रहे हैं। तो बाबा ने हमें पहले से ही मुक्त कर दिया है। कोई कहेगा सिनेमा चलो, हम कहेंगे हम नहीं जाते सिनेमा, तो वो बद्दुआ दे सकता है हम पर। हम उसको समझाते हैं कि ये सिन की माँ है, ये भगवान ने हमें ऐसे कहा है, इसलिए हमें जरूरत नहीं, हम सारा संसार ये सिनेमा ही तो है, वही तो देख रहे हैं, खेल ही तो है ये दुनिया, सब खेल में ही तो हम खेल रहे हैं, एक बेहद के नाटक में हम हैं। परंतु हम जो भी कहें वो इतना प्यार से कहें, जो उसको लगे कि सचमुच इनकी बातों में कोई तथ्य है, तो वो कभी भी बुरा नहीं मानेगा, वो दुआ के रूप में ही लेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर भावना अच्छी नहीं है, हमारे अंदर कोई बदले की भावना है, या हमारे अंदर में घृणा है, नफरत है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको दुआ कभी नहीं स्वीकार करेगा, और वो भी दुआ नहीं करेगा। तो एक तो कभी दुआ मांगनी नहीं है, दुआ मांगी नहीं जाती है, मुझे दुआ करो, वो कहेगा मेहनत करो, दुआ क्या मांग रहे हो। अगर बच्चा लायक नहीं है तो माँ बाप कोई ऐसे ही थोड़ी दुआ करेगा, करेंगे। लेकिन अगर बच्चा लायक है तो बच्चा मांगेगा भी नहीं तो भी माँ बाप दुआएं देंगे, लायक होना जरूरी है। और लायक कैसे होते हैं, जब गुण होते हैं हमारे जीवन में, शांति होती है, प्रेम होता है, खुशी होती है। तो बाबा हम बच्चों को हमारी दृष्टि का ही परिवर्तन करा लेते हैं। जब बाबा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वराज्य अधिकारी हम कैसे बनते हैं, अपने इंद्रियों पर शासन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर शासन है, ये शासन ही स्वराज्य अधिकारी बनाता है। हम दूसरे पर शासन नहीं कर सकते हैं, उनको आदेश भी नहीं दे सकते, आजकल तो छोटे बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते, वो परिस्थिति आ गई है, क्योंकि अंदर में सहन करने की किसमें ताकत ही नहीं है। किसी छोटे बच्चे को भी कहो बेटा ये ऐसे मत करो, वो कहेगा करूंगा करूंगा, नहीं मानेगा। तो आजकल ये भाषा ही बदल गई है, बच्चे बेटा ऐसा मत करो ये कहना ही नहीं चाहिए, बेटा ये करने से क्या नुकसान होगा बस इतना बताओ, और ये करने से क्या फायदा होगा। हम तो विदेशों में जाते हैं, वहां देखते हैं बच्चे आजकल के कोई मानता नहीं है, इसलिए माँ बाप संभल गए हैं, बच्चे को सीधा कभी नहीं कहेंगे बेटा ऐसे करो, परंतु पूछते बेटा ऐसे करोगे, बेटा आप ये आपको अच्छा लगेगा, और बेटा ये आपको लगता है कि ये बुरा है, यानी इतना प्यार से कहेंगे तभी बेटा पहले सोचेगा बुरा है या अच्छा है देखो, फिर उसको जो पसंद आएगा वो ही करेगा, हमारे कहने से नहीं करेगा। तो इसलिए आज हर एक आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, जो वो समझ ही नहीं सकती कि आखिर उसको करना है क्या, क्या नहीं करना है। तो हम अपनी फर्ज अदाई अवश्य निभाएंगे, उनको प्यार से बता कर, अब बाकी उनके ऊपर है, पर हम अधिकार नहीं रख सकते कि वो जैसे मैं कहूं वैसे ही करे, परंतु उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना होगा, बहुत नम्रता धारण करनी पड़ेगी। आप सभी यहाँ प्रवृत्ति मार्ग वाले बैठे हैं, घरों में तो कई बातें आती होगी, कई परिस्थितियां आती होगी, तो कई बार बहने कहती है, भाई भी कहते कि हमको ही झुकना है, बाबा भी मुरली में कहते, कई बच्चे कहते हमको ही झुकना है, हमको ही मरना है, हमको ही सीखना है, बाबा कहते हाँ हमको ही झुकना है, हमको ही मरना है। पर ये एक बार का मरना जन्म जन्म के लिए हमें हमको काल पर विजय प्राप्त करा के अमर बना देगा, ये एक बार का बस मरना, ये मरना मरना नहीं है, ये झुकना झुकना नहीं है, ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक तरीका है। परंतु इसका आधार क्या होगा? जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने बहुत स्पष्ट होगा कि हमको सबको दुआएं देनी है और सबसे दुआएं लेनी है, उसके लिए मुझे मरना झुकना पड़ेगा हर जाने, क्योंकि यही समय है 63 जन्मों का सारा हिसाब किताब चुकतू करने का। इस संगम युग पर हमें सारा 84 जन्मों का खाता ठीक करना है, क्योंकि 63 जन्मों का पाप का खाता हमारे सिर पर है। तो इतना सारा जो 63 जन्मों का पाप का खाता सिर पर है, उसको चुकतू भी करना है। और फिर बाबा कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई जमा करनी है। तो 63 जन्मों का जो घाटा है उसको पूरा करना है और 21 जन्मों की कमाई करनी है, तो टोटल 84 जन्म हो गया। तो सारा 84 जन्मों के खाते को ठीक करना है। अब किसके सिर पर बहुत बड़ा कर्जा हो और उस कर्जे को भी उसको चुकता करना है, और आगे के लिए इतनी कमाई करनी है जो जमा का खाता भी बहुत हो जाए, तो उसके लिए उसको कितना कमाना पड़ेगा, बहुत कमाई करनी पड़ेगी, तब उसका इतना कर्जा भी चुकता होगा और आगे की कमाई भी जमा होगी। और बाबा कहते हैं ये संगम पर तुम्हें करना है। तो कैसे हम ये सहज रूप से कर सकते हैं? सबकी दुआएं लेने से। पर सबसे ज्यादा दुआओं से भी बड़ी चीज शिव बाबा का की आज्ञा पर चलने से, जो भगवान का हमें वरदान मिलता है, उनकी जो छत्र छाया मिलती है, उससे हमारे सहज ही पाप नाश हो जाते हैं। जो आज बाबा ने कहा, रोज बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो, यही अमृत धारा है सब बीमारियों की दवा, मुझे याद करो। तो बाबा की याद से जो भी मेरा कर्म होगा वो श्रेष्ठ कर्म होगा ही, वो कर्म दुआओं भरा होगा ही, क्योंकि मैं आत्मा भरपूर हूं। आज भी बाबा ने कहा कि आपको इतने मालामाल हो, भगवान आपको मिला है और क्या चाहिए आपको, सब कुछ प्राप्त हो चुका है, चाबी मिल गई है, खान की खजाने की चाबी मिल गई है, ज्ञान गुण शक्तियों का इतना भरपूर खजाना बाबा ने हमें दे दिया है जो कहीं आंख डूबती नहीं है। जैसे कोई करोड़पति हो, मान लो अगर उसका चलो 100-200 रुपया भी कहीं गुम हो जाए, चीज का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब गरीब बेचारा होगा, उसका 200-500 गया तो बहुत बड़ी चीज होगी उसके लिए। तो अगर कुछ बातें होती भी है, हम उस रूप से सोचे कि जो पदम पति बनाने वाला स्वयं भगवान पद्मा पदम भाग्यशाली हमें बना रहा है, इतने भरपूर हम हो रहे हैं, ये छोटी छोटी बातों को तो हम डोंट केयर करते हुए, लेट गो करते हुए, छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उन छोटी बातों में फंस जाते हैं। जैसे रास्ते पर कोई पत्थर आ जाए, उस पत्थर को तोड़ने लग जाए कोई, अरे पत्थर आ जाए तो तुम तोड़ने क्यों लग जाते हो, अपना समय क्यों वेस्ट करते हो, आप हट जाओ, आपको तो आगे जाना है, वहां रुकना थोड़ी है। तो हम छोटी छोटी बातों में जो रुक जाते हैं, जिसके कारण ही फिर हमारा समय श्वास संकल्प शक्ति सब व्यर्थ चला जाता है। हवाई जहाज को हम देखते हैं कि कैसे अगर इतना बड़ा पहाड़ भी आ गया, उससे भी ऊंचा चला जाता है, ताकि पहाड़ भी उसके लिए विघ्न रूप नहीं बनता है, बादलों से भी ऊपर चला जाता है। कोई कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न हो, वो उसके आगे विघ्न नहीं बनेगा, क्योंकि उनसे ऊंचा चला जाता है। तो बाबा भी कहते हैं जब भी कोई ऐसी बात आए ना, ये योग की शक्ति से हम सहज ही आत्म अभिमानी बन जाते हैं, देही अभिमानी बन जाते हैं, और सहज उस परिस्थिति से ऊपर हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। एक मिसाल देते हैं ना कि कैसे एक बिल्ली किसी कबूतर के सामने आए, कबूतर दाना चुग रहा था, बड़ा मस्ती से दाना चुग रहा था और सामने एक बिल्ली आई और जैसे ही बिल्ली को देखा डर गया, डर करके आंखें बंद कर दी। अब आंखें बंद कर दी तो बिल्ली ने उसको पकड़ लिया, बेचारा घबरा गया। लेकिन उस समय अगर वो दाने में जो उसकी बुद्धि थी उसकी जगह बिल्ली को देख करके सावधान हो जाता और उड़ जाता तो बिल्ली उसको कहां से पकड़ती, बिल्ली तो को तो पंख नहीं है जो उड़ करके उसको पकड़े हवा में, पंछी के पास तो पंख है। तो ये जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है ये बिल्ली की तरह आती है, माया बिल्ली है ना, ये परिस्थितियां भी माया बिल्ली की तरह है। पर उस समय हमें एक सेकंड में उड़ जाए माना मैं कौन हूं, मैं उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं, ये परिस्थितियां क्या है मेरे आगे, मैं किसकी संतान हूं, बस वो ऊंचा नशा चढ़ जाए और आत्मा जैसे मन बुद्धि से इस आकर्षण से या इस परिस्थिति से ऊपर उठ जाए, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब हम मेरा मेरा करते तब उसमें फंस जाते हैं, मेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो एक ही काम है बस सबको दुआएं देना। फिर बाबा कहते तुम फरिश्ते हो, फरिश्तों का तो काम ही ये होता है दुआएं देना, फरिश्तों का पैर तो धरती पर पड़ता ही नहीं है और देवताओं का भी पैर इस कलयुगी सृष्टि पर नहीं पड़ेगा, जब सतयुग बने तब देवताओं का पैर सृष्टि पर पड़े और फरिश्तों का तो वैसे ही नहीं पड़ता है। तो मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाला, मेरा पैर कैसे इस धरती पर पड़ेगा, मेरी नजर कैसे इस धरती पर जाएगी। सदा बाबा कहते डबल लाइट बन करके बाबा के साथ उड़ते रहो। तो दुआएं देना और लेने के लिए पहले तो बहुत हल्का बनना पड़ेगा, किसी भी बात को पकड़ करके नहीं रखना है। जैसे ही पकड़ के रखा या तेरा मेरा कहा फंसे, और फंसे माना दुआओं के भागी कभी नहीं बन सकेंगे, छोड़ो तो छूटो। वैसे भी दुनिया में कहते हैं अकेले आए हैं अकेले जाना है, लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये मध्य मार्ग सिखाया है। बाबा कहते हैं अपने को कभी भी गृहस्थी भी मत समझो, मैं गृहस्थी हूँ, मैं इतने बच्चों वाली माँ हूँ, इतने बच्चों वाला पिता हूँ, नहीं गृहस्थी नहीं हूँ मैं खुद ही बच्चा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, तो बच्चा थोड़ी गृहस्थी होता है। फिर मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, कोई कहते बस मुझे तो परिवार में रहना नहीं है, मुझे सब बच्चे नहीं चाहिए, ग्रस्त नहीं चाहिए, बस मैं तो सन्यासी बन जाऊं, बस अकेला रहूं, बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ये संसार का, बस यहाँ आके मधुबन में बैठ जाऊं, बस सब झंझट छोड़ करके। बाबा कहते ये भी नहीं करना है, परिवार में भी रहना है, सन्यासी तो हम है नहीं। कई लोग समझते हैं कि हम सन्यासी हैं, हम कहते नहीं है, हम भी तो अपने परिवार में रहते हैं, अगर मधुबन में भी रहते हैं भी तो परिवार है ना, एक लौकिक परिवार में तो फिर भी सब अपने जैसे होते हैं, एक ही जाति होती है, एक ही भाषा होती है, एक ही कुल बना वो ही परिवार है, एक ही परिवार के मेंबर्स हैं, ब्लड रिलेशनशिप है। यहाँ तो बेहद का परिवार है, कोई ब्लड रिलेशनशिप भी नहीं आपस में, कोई महाराष्ट्र का तो कोई पंजाब का तो कोई कर्नाटक का तो क्या, और सब मिल करके रहते तो और ही कितनी बातें हो सकती है। वहां तो फिर भी ब्लड रिलेशनशिप है, कुछ मोह ममता है तो मिल करके रह सकते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही वो रूप नहीं है। परंतु कैसे रहते हैं सब मिल करके, एक बाबा के सहारे से। बाबा वो मैग्नेट है, जैसे एक मैग्नेट होता है ना, उस वो कई सुइयां बिखरी हुई पड़ी है और उन बिखरी हुई सुइयों को अगर उठाना है तो एक मैग्नेट एक चुंबक रख दो वो सारी सुइयां चुंबक के नजदीक आ जाएगी और एक एक सुई एक एक छोटा छोटा चुंबक बन जाएगी, दूसरी सुई को आकर्षित करेगी एक चुंबक के कारण। पर चुंबक को आप हटा दो तो क्या होगा, क्या होगा, सारी सुइयां गिर जाएगी। तो चुंबक वो सहारा है, तो हम सबका सहारा तो बाबा है ना। तो कैसे बेहद परिवार में हम रहते हैं, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं आप लोग इतना प्यार प्रेम से कैसे रहते हो, हम कहते हैं दो बातें हैं यहाँ। एक बात तो ये है, पहली बात कि मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है, इसलिए गृहस्थी भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, सब कुछ है, कोई कमी भी नहीं है, पर ट्रस्टी है, बाबा का है, मेरा नहीं है। ये मेरा मेरा जो दुनिया में है उनसे हम परे हैं, यहाँ बाबा का है, बाबा हाँ, बाबा ही दे रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा पहना रहा है, बाबा दे रहा है। इसलिए ट्रस्टी होकर के हम रहते हैं, तो परिवार में भी बाबा कहते ट्रस्टी होके रहो, यहाँ हम भी ट्रस्टी होके रहते हैं। दादी जानकी से पूछो, दादी कहेगी मैं तो कभी एक एक, एक पर्स भी नहीं लेती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, कुछ भी एक पाई भी नहीं है। लेकिन बेपरवाह बादशाह है, बेगमपुर का बादशाह है, विश्व का मालिक बनने वाले हैं, कितना बड़ा नशा है। तो इसीलिए बाबा ने ये मध्य मार्ग हमें दिया है, रहो भी अपने घर गृहस्थ में, सब थोड़ी यहाँ के बैठेंगे। पहले बाबा ने कहा है मकान बनाते जाओ, अंत के समय बहुत आकर के आश्रय लेंगे, बहुत आश्रय लेने वाले हैं अंत के समय पर आएंगे, इसलिए बाबा मकान बनवा रहे हैं। कई भाई बहने कहते बाबा कहते विनाश होगा विनाश होगा, फिर ये मकान क्यों बनवा रहे हैं, विनाश हो जाएगा तो मकान क्यों बना रहे। तो बाबा कहते मकान बना रहे इसलिए ताकि अंत के समय आश्रय मिल सके एक बाबा की छत्र छाया के अंदर, क्योंकि धन भी तो खत्म हो जाना है, जो है वो भी खत्म होना है, मकान भी खत्म होने हैं, पर सब एक बाबा की छत्र छाया में है, एक साथ उड़े वतन में रहना थोड़ी है इस दुनिया में, पर अभी ट्रस्टी होके रहना है, चाहे कोई यहाँ रहे चाहे घर गृहस्थ में रहे। इसलिए ये मध्य मार्ग बाबा ने बहुत सुंदर दिया है, हर बात का बैलेंस, जब बैलेंस में हम रहते हैं तब तो ब्लेसिंग मिलती है जो बाबा कहते हैं। तो दुआएं कब मिलेगी, जब बैलेंस में रहेंगे। कई बार क्या होता है जोश में बहुत आ जाते हैं, जोश जोश एक अच्छी चीज है, पर जोश के साथ होश भी होना चाहिए। होश का मतलब क्या है, आगे पीछे सोचना है, जरूर सोचना है इसका नतीजा क्या होगा, पर नतीजा ये भी नहीं सोचना है कि हाय मेरा क्या होगा, नहीं, भावना है विश्व का मुझे कल्याण करना है, मेरा अपना स्वार्थ नहीं है, उसके लिए बाबा क्या सोचेंगे ये पहले हमें सोचना होगा। बाबा क्या सोचेंगे, बाबा इस समय होते तो क्या करते। जब बाबा कहते हैं कि बाबा के कदम के पीछे कदम रखना माना 10 कदम ब्रह्मा बाप के बताते, तो इस समय अगर बाबा मेरी जगह होता तो बाबा क्या करता। बाबा ने छोड़ा थोड़ी अपने परिवार को, कभी नहीं छोड़ा, बाबा की युगल बच्चे सब साथ में थे, ये थोड़ी काम है सन्यासी बन रहा हूं मैं घर से निकल रहा हूं, नहीं, परिवार को भी साथ में उठाया और परिवार ऐड होते गए, एक परिवार बनता गया बनता गया और प्रजापिता कहलाए। लौकिक में भी बाबा कहते थे विश्व सर्व के कल्याण के प्रति भक्ति भी करते थे, मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए, अपने प्रति तो कभी कोई बाबा को इच्छा नहीं थी, सर्व के कल्याण के लिए, सर्व के कल्याण के लिए यही बाबा कहते थे। तो दुआएं देना और दुआएं लेना ये तब हो सकता है जब हमारा दिल बहुत बड़ा हो, बहुत विशाल हो। तो एक तो मेरा कुछ नहीं सब बाबा का है, और दूसरा मुझे पहले बदलना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये हम तुम बच्चे कभी मत भूलो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा जब तक स्व परिवर्तन नहीं होगा। मैं बदल जाऊंगा, जग बदल जाएगा। इसलिए मैं अगर ये लक्ष्य रखती हूं कि मुझे दुआ देनी है, मुझे हरेक के प्रति शुभकामना रखनी है, मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई बुरा संकल्प न आए, ये पहले अपने अंदर भरना है। हम दूसरों से अपेक्षा न करें कि वो मेरे लिए बुरा न सोचे। पहले मैं अपने आप को देखूं, मैं कितना दूसरे के लिए बुरा सोचती हूं या सोचता हूं। अगर मैं ही अपने आप को बदल नहीं सकती हूं, मेरे अंदर में जो बुरी सोच है वो नहीं बदल सकती हूं, तो हम कैसे अपेक्षा रखते कि वो बदले। अगर उसकी सोच को बदलना है तो पहले मैं अपनी सोच को तो बदलूं। अपनी को बदल ही नहीं सकती और मैं सोचती हूं दूसरा बदले, कैसे होगा। मैं अंदर में श्रेष्ठ संकल्प करूं, ऑटोमेटिकली वो मेरे संकल्प उनको पहुंचेंगे और वो भी वैसा ही संकल्प करने लगेगा जैसे मेरे संकल्प है। अभी मेरे संकल्प तो उल्टे हैं और मैं सोचती हूं कि वो सच्चे संकल्प करे, कैसे करेगा। इसलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, मुझे बदल कर औरों को बदलने की प्रेरणा देनी है, न कि कह करके प्रेरणा देनी है, पर करके प्रेरणा देनी है, सोच कर प्रेरणा देनी है, क्योंकि जो सोचेंगे वही कहेंगे वही करेंगे। तो दुआएं माना अपने अंदर से, पहले तो ये सोचो कभी भी बद्दुआ किसके लिए ना निकले, कोई कैसा भी बुरा हो। कई बार ट्रकों के पीछे हम जाते हैं ना तो लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। पर एक जगह हमने पढ़ा, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। तो ये भी देखो दुआ रखी, दुआ की कि भले आपके अंदर बुरी नजर है, पर मेरी आपके लिए भी दुआ है कि आपकी ये दृष्टि बदल जाए। अभी ये सारा बहुत सारा किस्सा चला है दिल्ली में, इतना वो जो कांड हुआ, वो लड़की का जो बलात्कार किया, फिर उसको सिंगापुर ले गए, आज सुबह सुबह न्यूज आई कि वो मर गई, वहां सिंगापुर में मर गई, क्योंकि सब कुछ उसका नष्ट कर दिया था। तो ये तो ऐसे ही बस था कि चलो उनको ले जा रहे हैं। तो अभी मान लो तो कितना विरोध हुआ दिल्ली के अंदर। तो राष्ट्रपति जो भारत का है, उसका जो बेटा है, उसने प्रेस में कहा कि अगर लड़कियां अपने आप की रक्षा करें, अपनी अपनी चलन को सुधारे, लड़कियां अगर ठीक वस्त्र पहने और अपने माना स्वयं संभाल रखे, तो पुरुषों को क्या पड़ी है जो लड़कियों के पीछे जाएंगे। परंतु लड़कियां खुद भी तो अपनी शक्ति में रहे ना, अगर मानो सभ्य रहे, लड़कियां ही नहीं है तो वो तो और ही आकर्षित करे। तो उसने क्या कह दिया, एक शब्द कह दिया कि इतना फैशन करती है लड़कियां, इतना सब करती है, तो लड़कों को क्यों दोष दे रही है। तो इस पर भी बवाल उठ गया, बहुत हंगामा हो गया है कि ऐसा क्यों कहा उसने। पर मुझे बदलना है ये नहीं सोचता है कोई, यही तो बड़ी बात है, यही तो बड़ी बात है। दूसरा क्यों ऐसे कर रहा है, दूसरा ऐसे क्यों कर रहा है। बाबा तो कई बार हमें कहते, कोई कैसे भी नजर वाला दृष्टि वाला आपके सामने आ जाए, आप उसको आत्मिक दृष्टि से देखो, तो उसकी दैहिक दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। आपके अंदर में अगर नफरत की आग है, ईर्ष्या की आग है, तो फिर उसकी नजर भी वही बनेगी। तो हमारे अंदर उसको आत्मा की भावना हो करके देखेंगे, ये भी एक शुद्ध आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी दृष्टि भी पवित्र हो जाएगी। कई बार बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे, हाँ कई अनुभव होते ना, लोग आते हैं कि समझो बुरी नजर से आए, परंतु हमारी अगर नजर अच्छी है, दृष्टि अच्छी है, उसकी नजर बदल सकती है। बाबा एक बार मिसाल दिया कि जब हैदराबाद सिंध में बहुत एंटी प्रोपेगेंडा होने लगी ओम मंडली के प्रति, बहुत कुछ हुआ, तो कई जो एंटी ओम मंडली के थे उन्होंने सोचा बस बाबा को मार डाले, ऐसे भी हुआ था। तो बाबा तो अपनी मस्ती में रहते थे, किसके प्रति दोष तो रखना नहीं था, बाबा के प्रति तो कितनी गलत गलत बातें कही, क्या क्या फैलाया, बहुत कुछ फैलाया, क्योंकि बाबा के पास आती थी बहनें, उनको तो कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार करती थी, तो बस गोपी बन करके वहां रास भी करते थे। तो कई लोगों ने सोच कहा कि देखो ये दादा लेखराज अपने आप को कृष्ण कहलाता है और इसको 300-400 रानियां मिली है, ये कहता है मुझे तो 16,108 रानियां चाहिए। अब बाबा ने तो कभी नहीं ऐसे कहा, जरूर गोपियां थी, क्यों नहीं, गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। तो कितनी सारी बातें फैलाई, तो यहां तक भी षड्यंत्र रचा कि कैसे इनको खत्म कर दे। तो एक सरदार को तैयार किया और बाबा तो तपस्या में बैठे थे, वो आया अंदर और जैसे आया उसने वो बाबा तो दिखाई नहीं, परंतु उनको गुरु नानक दिखाई दिया, गुरु नानक दिखाई दिया। और जैसे गुरु नानक को देखा बस तुरंत बिल्कुल उनके वहीं पर तलवार जो लाया था या जो कुछ लाया होगा वो वहीं पर रख करके बिल्कुल न्योछावर हो गया उनके आगे, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे नहीं मालूम आप इतने महान हैं। बताते ना, कई संतों के लिए बताते हैं, कई महात्माओं के लिए ये कहानियां आती है। महात्मा गांधी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि महात्मा शब्द कहां से उनके ऊपर पड़ा, गांधी जी के ऊपर। तो वो मिसाल आता है कि गांधी जी तो तीसरी श्रेणी में सफर करते थे ट्रेन में, और अकेले अकेले जाते थे, कोई उनके साथ होते थे, कई बार नहीं भी होते थे। तो एक जगह गांधी जी को जाना था किसी शहर में, तो ट्रेन में चढ़े और वहां बहुतों को आना था मिलने के लिए, तो एक व्यक्ति भी उस ट्रेन में चढ़ पड़ा गांधी जी से मिलने के लिए। तो गांधी जी उनके बगल में बैठे हैं क्योंकि लंगोटी पहनते थे बस, बाकी तो कोई नहीं सोचेगा कि कोई इतने महान है। तो उनके बगल में बैठे थे तो उस व्यक्ति को बड़ी नफरत आई, ये कैसा व्यक्ति है, मिलने जा रहा है महात्मा गांधी से, उसको पता ही नहीं है गांधी जी है, कहाँ अखबारें तो उस समय इतनी देखते नहीं थे। तो जिसके पास में बैठा है तो देखा है पता नहीं कैसा व्यक्ति है, कोई गाँव का व्यक्ति होगा, तो उसके ऊपर थूक दिया। तो गांधी जी ने वो थूक को मिटा दिया, फिर दोबारा थूक दिया, 3-4 बार थूक दिया, लेकिन गांधी जी ने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल वो थूक हटा दी, लड़ाई करने नहीं लगा उनसे, शांत बैठा रहा। आखिर कहां तक, तो फिर वो उठ करके दूसरी जगह चला गया, गांधी जी तो शांति से बैठे हैं। तो जैसे स्टेशन आई तो पहले वो खड़ा है दरवाजे पर ट्रेन के, तो जुलूस वहां स्टेशन पर खड़ा था गांधी जी का आयान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, हाँ गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। तो वो खड़ा था दूसरा व्यक्ति जिसने थूका था, और ये इसको तो पता ही नहीं, और गांधी जी तो अंदर बैठे थे इस ट्रेन में। तो क्या हुआ, जैसे खड़ा रहा सबने कहा गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी कहाँ है, गांधी जी कहाँ है, कहा गांधी जी थोड़ी यहाँ होगा उसने कहा यहाँ तो है ही नहीं, बोला है क्यों नहीं। तो वो ये उतर गया और गांधी जी को लेने के लिए ये अंदर आए, तो जैसे ही इसको पता चला कि ये गांधी जी है तो उसको इतना बुरा लगा कि ये मैंने ऐसे क्या किया, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन अब वो कैसे उसका पश्चाताप करे, तो पश्चाताप करने के लिए उसने क्या किया, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय तो नारा लोग लगा रहे थे, तो इसने इसमें ऐड कर दिया महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी, तो महात्मा शब्द जोड़ दिया। तो महात्मा किस आधार पर कहा, उसने कितना सहन किया। अब सहन ही तो किया, उसने उसको डांटा थोड़ी, गुस्सा थोड़ी किया, झगड़ा थोड़ी किया, कुछ भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा मैं तो गांधी जी हूँ, ये भी नहीं कहा, दिखाया जैसे कि चलो ये बेचारा नहीं जानता। कितनी ऐसी मिसाल आती है। तो बाबा कहते हैं अगर दुआएं पानी हैं तो दुआएं देते जाओ, और अगर कोई बददुआ दे भी रहा है आप लो मत। महात्मा गांधी के साथ कईयों की, महात्मा बुद्ध की भी कहानी है। महात्मा बुद्ध के आगे कितनी बातें आई। इसी गांव में जा रहा था तो लोगों ने उनको रोका, वहां मत जाओ, वहां जो लोग हैं ना वो आपको बहुत बुरा मानेंगे, गाली देंगे, आप वहां मत जाओ। उसने कहा क्यों नहीं जाऊंगा। तो वो गया, तो जैसे ही उस गांव में पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति ने उसको खूब गालियां दी, आधे घंटे तक गालियां देता रहा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, शांत रहे। तो आधे घंटे तक वो बोलता गया, आखिर कहां तक बोलेगा। फिर महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांत मुद्रा में उस व्यक्ति को कहा, देखो भाई अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा है, पर जिसको दे रहा है वो व्यक्ति लेता ही नहीं है, तो वो चीज किसके पास रही। तो और भी उसको गुस्सा आ गया, और कहेगा ये कोई पूछने की बात है, जरूर उसके पास रही जिस जो दे रहा है। तो क्या आपने भी जो मुझे एक आधे घंटे तक देने की कोशिश की ना, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया। बस वो व्यक्ति इतना शर्मिंदा हो गया, उसी वक्त उसके पांव पड़ा और कहा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने महान हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी इतना ही महान बनना है, इतना ही श्रेष्ठ बनना है, जो कोई कैसा भी व्यवहार करे आपको कैसा व्यवहार करना है तभी आप अपनी दुआएं दे सकते हो। और एक न एक दिन भले वो कैसा भी है वो आपको जरूर दुआएं देगा, वो पश्चाताप करेगा और उसके कारण वो बदल जाएगा, ये भी जरूरी है, ये भी होगा। इसको कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो सदा अगर ये लक्ष्य है मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे सबको दुआएं देनी है, मुझे सबको सुख देना है, मुझे देना है, तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा और हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, पाप का खाता, हिसाब किताब, कर्मों का जो कुछ बनाया है वो सब खत्म होता जाएगा। आत्मा पुण्य आत्मा बनती जाएगी, महान आत्मा बनती जाएगी, देव आत्मा बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, अभी हम यहीं समाप्त करते हैं।
बनेंगे कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर।
हम खुद पर गौर करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे पेट बनेंगे।